डियर फ्रेंड्स नमस्कार।
हर एक स्टूडेंट मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। नंबर दो, मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन पूछने की जो आदत है वो हर स्टूडेंट डाले, हर स्टूडेंट पूछे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं है। वो हिचक है जो उसे रोक रही है, और हिचक दोनों ही तरफ से है, बोलने की हिचक और दूसरा लोगों के नजरों को फेस करने की हिचक। और इससे आपको उभरना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है आपके पास, और इसी से आपके इंटरव्यू की तैयारी भी होगी। अदरवाइज एक ऐसे समय में जाकर के आप मार खाएंगे जबकि आपको लग रहा था कि तट तो बिल्कुल नजदीक था, हम तो किनारे लग गए थे। क्योंकि जब रिवर्स होता है तो फिर प्रीलिम्स से होता है। तो ये जितनी भी आपकी जड़ताएं हैं, संकोच हैं, लिमिटेशंस हैं, अपने लिमिटेशंस को तोड़िए। और आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं मत भूलिए कि वो आपने बनाई हैं, सोसाइटी ने नहीं बनाई है, सोसाइटी का इंपैक्ट है वो अलग है। आपने अपनी लिमिटेशंस बनाई हैं, चाहे वो इंटेलिजेंसिया की लिमिट हो, चाहे पर्सनालिटी की लिमिट हो, चाहे थॉट्स की लिमिट हो, चाहे एटिकेट्स और मैनर के लिमिटेशंस हो, ये सारे के सारे मेड बाय यू है। और मैं बता नहीं सकता कि मैं जो आपके सामने इतना बकर बकर कर रहा हूं, मैं कितना संकोची आदमी था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं अपने गांव में, हमारी सामने गांव में तो घर और दुकान एक ही में होता है, हमारा बहुत बड़ा मकान था, गांव में तो कितनी भी जमीन लेकर के मकान बना लीजिए। तो दुकान में मैं रहता था और मैं अपने घर के अंदर जाने में संकोच करता था, क्योंकि वहां महिलाएं रहती थी। और महिलाओं में कौन रहता था? मेरी दादी, मेरी मां, मेरी चाची, मेरी बुआएं, ये रहती थी, और मैं जाने में संकोच करता था। आप कल्पना कर सकते हैं? इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं दोस्त कि आप अपने किसी भी लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं। और मैं तो चलिए अपनी बात बता रहा हूं, आप गांधी जी के सत्य का प्रयोग उठा करके देख लीजिए। मैंने शायद अपने ऑडियो में बोला भी था कि किस तरह से गांधी जो अपने राजकोट और मुंबई के कोर्ट में खड़े होकर के प्ली नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, इसीलिए तो, चूंकि उनके पिताजी के दोस्त थे सेठ अब्दुल्ला, जिनका दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा व्यापार था, तो उन्होंने तरस खा करके कि यह लड़का यहां तो काम कर नहीं पाएगा, बैरिस्टर बन गया तो बन गया है, तो तरस खा करके बोले यार इसको साउथ अफ्रीका भेज दो, वहां मेरी लिखा पढ़ी जो केसेस चलते उनको निपटाता रहेगा। उसके लिए गांधी जी गए थे। जो गांधी बोल नहीं पाता था, वो गांधी बाद में जब बोलने लगा तो सारी दुनिया न केवल सुनने लगी बल्कि थर्राने भी लगी, और न केवल सुनने और थर्राने ही लगी बल्कि वही बात दोहराने लगी जो गांधी बोलते थे। तो कैसे अपने लिमिटेशन को ब्रेक किया? प्लीज ट्राई टू ब्रेक योर लिमिटेशंस, और छोटी छोटी चीजों को वॉच कीजिए, अपने चलने के ढंग, बैठने के ढंग, बात करने का तरीका, शब्दों के उच्चारण, दूसरों से मिलते समय क्या हिचक होती है, भाषा पर काम कीजिए। अगर कोई अच्छे शब्द मिल जाते हैं उनको नोट कर लीजिए, अच्छे वाक्य मिल जाते हैं उनको नोट कर लीजिए, इसके बाद उनको प्रयोग में लाइए, साल भर तो करके देखिए और आप यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। तब जाकर के आप देखेंगे कि आपके सिविल सर्विस की कैसे तैयारी होगी। दोस्तों मैं ये जहां जितनी बातें बता रहा हूं आपको, मैं इमीडिएट की बात नहीं बता रहा हूं, है ना, मैं एक थोड़ी सी लंबी योजना की बात बता रहा हूं, क्योंकि सिविल सर्विस को मैं बार बार उसी बात को दोहराता हूं कि एक मैराथन दौड़ मानता हूं, तो एक लंबी योजना का हिस्सा मैं लेकर के चलता हूं। और मैंने अपने लिए ये किया, 1979 में पैटर्न चेंज हुआ, 1980 में मैं एग्जाम में अपीयर हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपने को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया कि मैं कहां मार खाया हूं, कहां मेरी कमी रही है, और वो सारी मेरी कमियां बड़े आराम से पकड़ में आ गई। मैं एक उदाहरण केवल आपको देना चाहूंगा जो मैं अक्सर देता हूं, और हिटलर जैसे ने वो उदाहरण सुना होगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, हिस्ट्री में एक प्रश्न आया था कि शिवाजी के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4, 6, 8, जो भी ऑप्शन दिए हों, ये मैं गलत करके आया था। और केवल इसी एक गलती ने मेरे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के पूरे पैटर्न को बदल करके रख दिया। मैं कहा नहीं, अगर मैं इतनी सिंपल सी चीज को गलत कर रहा हूं तो बाकी चीजों को पता नहीं मैंने कितना गलत किया होगा। मुझे यह भ्रम है कि मैं सही करके आया हूं, क्योंकि वो तो पकड़ में आ गई। तो मैंने 1981 में मैं एपियर ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। और फिर मैंने जब 82 में एपियर हुआ तो प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई हो गया। तो इस तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। मुझसे आज भी लिखने की मात्राओं में गलतियां होती हैं। हिंदी जब मैं लिखता हूं तो मुझसे आज भी मात्राओं की गलतियां होती हैं, और इसके लिए मैंने अपनी पत्नी और अपने फादर इन लॉ, जो दोनों लिटरेचर के हैं, मेरे फादर इन लॉ तो लिटरेचर के प्रोफेसर ही रहे, रिटायर हुए कॉलेज में, मेरी वाइफ ने लिटरेचर में गोल्ड मेडल लिया, इनको मैंने बिल्कुल मैंडेट दे रखा है कि जब भी मेरी कोई गलती हो तो मुझे तुरंत बताया जाए। और जब मैं ट्रेनिंग में था तो उस समय मेरी शादी पक्की हो चुकी थी, तो उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो किससे आप बातचीत करेंगे? लेटर से। और मैं लेटर लिख करके भेजता था, और उन लेटर्स पर लाल लाल गोले के निशान लग के मेरे पास वापस आते थे कि ठीक है, प्रेम प्यार और इन सब की जितनी बातें हो गई, लेकिन इनको देखो, आज भी मेरे पास सुरक्षित है। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप अपनी कमियों को दूसरों की इजाजत दे सके कि भैया मुझे बताओ। और अब मेरी वो जो, क्योंकि मैं गांव में पढ़ता था, शुद्ध लेख जैसी कोई चीज होती नहीं थी, तो मात्राओं की बहुत गलतियां होती थी, लेकिन मुझे अपने सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए उससे मुक्ति पानी थी। वहां वो मुझे इसलिए माफ नहीं कर देंगे कि भाई बेचारा गांव में पढ़ा है, बेचारा कॉलेज स्कूल में भी रेगुलर नहीं गया है, वहां कुछ नहीं चलता है। अपने अंदर से इस बेचारगी के भाव को खत्म कीजिए। आप में से कोई बेचारा नहीं है। आपने अपने दिमाग में जाल बुन लिया है कि मैं बेचारा, केवल दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए, फालतू की चीज है। हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए प्रकाश और नए विवेक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, इजाजत दें और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।